ओम शांति,
ओम शांति,
ओम शांति। दादी जानकी ने हमें 3 बार ओम शांति कहना सिखाया है। दादी हमेशा कहा करते थे, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। तो यही विधि हमने भी जरूर अनुभव की होगी। तो सबसे पहले प्यारे बाप दादा, मीठी मम्मा, सर्व दादियां, सर्व मधुबन निवासी भाई बहने और हमारे तरफ से भी, इन सब की तरफ से और हमारे तरफ से भी, आप सभी दिल्ली निवासी भाई बहनों का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आपने लिए जोर से ताली बजाएं। मधुबन तपोभूमि है, वरदान भूमि है, परिवर्तन भूमि है। ब्रह्मा बाप, जगदम्बा सरस्वती और सर्व दादियों की तपस्या भूमि है। तो ऐसे स्थान पर बठ्ठी करना ये एक बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है। आप में से कई भाई बहने ऐसे भी होंगे जिनका कोई प्रोग्राम नहीं था आने का, लेकिन ऐन मौके पर आपको कहा गया कि आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं और आप तैयार हो गए। और ऐसे भी कई होंगे जिनों का प्रोग्राम था, सब फिक्स था, तैयारी भी कर ली थी पर ऐन मौके पर वो नहीं आ सके। तो हम तो यही कहते हैं, जो पहुंच गए वो बहुत 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 भाग्यशाली। तो अपने लिए और ताली बजाओ। तो मधुबन में आना माना सहज ही योग युक्त हो जाना। रविवार को बाबा ने हम बच्चों के आगे कितनी अच्छी मुरली चलाई है ना, संडे की मुरली, योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति। बाबा ने कहा 2 प्रकार के बच्चे बाबा देख रहे हैं, एक है योगी बच्चे। तो योगी तो सभी हैं, हम सब कौन हैं, राजयोगी हैं, प्रजा योगी तो नहीं है ना। राजाई लेने लिए हम योग लगाते हैं, भगवान से स्वर्ग का अधिकार लेने लिए हम राजयोग सीख रहे हैं। तो योगी तो सभी हैं, लेकिन योग युक्त कहाँ तक है, योग युक्त के साथ कितने और शब्द जुड़ जाते हैं। योग युक्त के साथ फिर युक्ति युक्त भी बाबा कहते हैं, फिर ज्ञान युक्त भी कहते हैं, धारणा युक्त भी कहते हैं, राजयुक्त भी कहते हैं। ये शब्द सारे बाबा की मुरलियों में आते हैं। तो इन सब शब्दों में भी कितना बड़ा अर्थ समाया हुआ है। और फिर बाबा कहते हैं, सदा के योगी, स्वतः योगी, श्रेष्ठ योगी, सहज योगी। तो उनमें भी क्या अंतर है वो भी हमें समझना होगा। सहज योगी और स्वतः योगी, स्वतः योगी जिसको बाबा कहते हैं नेचुरल, स्वतः ऑटोमेटिक, जिसमें हमको मेहनत न करनी पड़े, तो वो योगी कहाँ तक बने हैं। तो योगी तो हम सभी कहेंगे अपने आप को, जिसने राजयोग सीखा, अपने आप को आत्मा समझ, परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ना ये राजयोग है, और परमात्मा से सर्व प्राप्तियां करना ये राजयोग है। जिस राजयोग के द्वारा ने इंद्रियों संस्कार के सर्व पुराने जो संस्कार है सब पर हम विजय प्राप्त करते हैं, तो लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है। और ये सब करने से क्या हमारा उद्देश्य है, क्यों ये सब कर रहे हैं? क्योंकि हमको पावन बन घर जाना है। पावन बने बिना हम घर नहीं जा सकते हैं। और दो तरीके बाबा कहते पावन बनने के हैं, एक तो योग द्वारा, दूसरा सजा द्वारा। तो जितना सजा द्वारा पावन बनेंगे उतना पद तो कम हो ही जाएगा, और जितना योग द्वारा पावन बनेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। तो इसलिए बाबा ने ये सारी बातें स्पष्ट तो कर दी है, अब उनको हम कहाँ तक अमल में लाते हैं, अपने जीवन में धारण करते हैं, वो हमारे ऊपर है। तो बाबा ने बहुत बड़ा उद्देश्य तो दे ही दिया, घर चलाए। बाबा आते ही तब हैं जब बच्चों को घर ले जाना है वापस। बीच में आकर क्या करेंगे, क्योंकि उनका यही कार्य है सब बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देना, तो वो तो अंत में ही होगा, बीच में तो कोई नहीं जा सकता है। तो इसलिए बाबा आते ही अंत में हैं और हमें कहते हैं बच्चे अभी घर चलना है। सबसे बड़ा संदेश यही बाबा लाते हैं। इसलिए बाबा कहते धर्म पिताओं को मैसेंजर नहीं कहेंगे, वो संदेश वाहक नहीं है, वो कोई संदेश नहीं लाते हैं, लेकिन इस दुनिया में कैसे रहना है, समय अनुसार कैसे चलना है, तो वो जो उस समय की स्थिति थी उस अनुसार उन्होंने प्रीचिंग की या जो कुछ ज्ञान दिया। लेकिन घर जाने का, वापस परम धाम जाने का रास्ता वो बाप ही बताते और वही मैसेज देते। इसलिए बाबा कहते तुम सच्चे मैसेंजर हो, क्योंकि सबको रास्ता बताते हो। तो घर का रास्ता बताना माना खुद तो एवर रेडी है हम, कि कभी भी बाबा बुलाए हम तैयार हैं। इसलिए बाबा तीन शब्द तो कहते ही हैं। हाँ, कौन से तीन शब्द कहते हैं? एक तो बाबा कहते हैं अचानक, दूसरा बाबा कहते हैं एवर रेडी, और तीसरा बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास। ये तीन बातें क्यों बाबा कहते हैं? क्योंकि हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि अब घर जाना है। तो अचानक कुछ भी हो जाएगा, अचानक होगा, सब कुछ अचानक होगा। अचानक क्यों बाबा कहते हैं? होगा तो सब ड्रामा अनुसार ही, लेकिन अचानक क्यों बाबा कहते हैं? अचानक तो कुछ है ही नहीं, सब ड्रामा में फिक्स्ड है। लेकिन अचानक क्यों बाबा कहते हैं? क्योंकि बाबा पहले बताएंगे नहीं, इसलिए विनाश ही दे रहे होना है। बाबा कहते वेट एंड सी, तैयारियां तो सब हो चुकी है लेकिन हमारी देरी है, हम तैयार नहीं है। तो इसीलिए अचानक बाबा कहते हैं, फिर बाबा कहते एवर रेडी, क्योंकि जब अचानक होगा तो हम अगर तैयार नहीं होंगे तो कैसे जा सकेंगे। पर तैयार भी तब हम पूरे हो सकेंगे जब बहुत काल का अभ्यास होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं वैसे तो मुक्ति, जीवन मुक्ति बाबा कहते सेकंड की प्राप्ति है, सेकंड में जीवन मुक्ति, लेकिन समय किस में लगता है? विकर्मों को दग्ध करने में, पावन बनने में, पुराने संस्कारों को मिटाने में, इसलिए ये समय लग रहा है। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को बहुत ऊंचा उद्देश्य दे रहे हैं, बच्चे घर जाना है तो पावन जरूर बनना है, क्योंकि कोई भी पतित घर नहीं जा सकता है। और फिर घर जाने से पहले फरिश्ता बनना है, फरिश्ता बनने से पहले बाबा है, देवता बनना है, ये तो है अंतिम उद्देश्य। उसमें भी लक्ष्मी नारायण बनना है, कितना ऊंचा उद्देश्य बाबा देते हैं। भले बाबा कहते हैं फर्स्ट नंबर तो मम्मा बाबा आएंगे, लेकिन फर्स्ट स्टेज तो है ना। हाँ, पहला फर्स्ट क्लास में तो बहुत आ सकते हैं, भले पहला नंबर बाबा मम्मा लेंगे, परंतु उनके साथी भी तो चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं चलो 108 में आ जाओ, वो भी नहीं हो सकता है तो अच्छा 16,000 में आ जाओ, अच्छा वो भी नहीं हो सकता है तो 9,00,000 में तो आ जाओ, शुरू शुरू में तो आओ। शुरुआत माना कम से कम 9,00,000 में तो आएंगे, वो तो बहुत होंगे। तो पहला तो हमारा उद्देश्य है कि ऊंचे से ऊंचा पद पाना है सतयुगी दुनिया में, पर उसके पहले घर जाना है, उसके पहले फरिश्ता बनना है, उसके पहले बाप समान बनना है, पर उसके पहले जो बताया छोटे छोटे लक्ष्य। तो छोटे छोटे लक्ष्य क्या है, हम सब श्रेष्ठ योगी हैं, स्वतः योगी हैं, तो ऐसे हम हैं पूछे हम अपने आप से, तो किसको कहेंगे सहज योगी, जो युद्ध कर रहा है संघर्ष कर रहा है वो तो सहज योगी नहीं होगा ना, कि वो तो फिर मेहनत वाला योगी होगा। सहज योगी माना केवल इतना ही नहीं कि अपने आप को आत्मा समझ बाबा को याद करना, वो तो है इसीलिए सहज योग है, लेकिन सहज योग का अर्थ ये भी है कि मेहनत नहीं हो। अगर मेहनत कर रहे हैं तो फिर योद्धा कहलाएंगे, क्योंकि योद्धे तो मेहनत करते हैं। और देवताओं को कहाँ दिखाया है, कमल फूल पर विराजमान साक्षात्कार मूरत, वो योद्धे तो नहीं है। तो इसीलिए अगर वो स्वरूप का अनुभव करना है तो फिर हर समय योग युक्त रहना होगा, और योग युक्त रहने के लिए बाबा ने उस दिन बहुत सुंदर बात कही, दो शब्द बाबा ने दिए। कौन से दो शब्द याद है? सारथी और साक्षी। अब इसकी बहुत बड़ी गहराई है, साक्षी और सारथी। सारथी जैसे गीता में दिखाते हैं कि अर्जुन को भगवान ने कहा मैं तुम्हारा रथ चलाऊंगा, बाकी करना सब कुछ आपको है, मैं तीर कमान नहीं चलाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं केवल तुम्हारा रथ चलाऊंगा। तो सारथी बन करके रथ चलाया, बाकी सारा काम तो अर्जुन का था। तो हम भी सारथी कहाँ तक बने हैं? सारथी की तुलना हम कह सकते हैं ड्राइवर के साथ। ड्राइवर की अपनी गाड़ी नहीं है, वो तो मालिक की गाड़ी चला रहा है, और उस गाड़ी के अंदर उनके जो मालिक है वो खुद बैठा है, उनके साथ में और भी बैठे हैं, और ड्राइवर को तो केवल गाड़ी चलानी है बस। वो बीच अंदर बैठे हुए क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो उनको नहीं, सारथी को नहीं सुनना है। अगर वो सुनने बैठ जाए, उनको ही देखने लग जाए, अगर वो खा रहे हैं तो वो ड्राइवर भी खाना शुरू कर दे, और अपना रथ जो उसको चलाना है वो भूल जाए तो क्या होगा, एक्सीडेंट कर देगा, या और कुछ काम कर ले, चलो मोबाइल ही चला ले। तो कहते ना ड्राइवर को मोबाइल भी नहीं चलाना है, गाड़ी चला रहे हैं तो बात नहीं करनी है, फिर नहीं तो ध्यान बढ़ जाएगा। तो ध्यान केवल रथ चलाने में बस, और वो भी मालिक बनकर के चलाने में, मालिक बनकर। ये नहीं कि मालिक उसको कहेगा ऐसे करो ऐसे करो, उसको पता है मुझे कहाँ जाना है, मंजिल उसको बुद्धि में है, और समय पर पहुंचना है ये भी उसको बुद्धि में है, कैसे रथ को चलाना है वो भी वो अच्छी तरह जानता है, इसलिए हर बात की उसको जानकारी है, और उस अनुसार बिना अपने मन को कहीं भी डिस्टर्ब करके वो रथ पर ध्यान देता है, गाड़ी पर ध्यान देता है, बैलेंस पूरा रखता है, इतना अलर्ट रहता है कि कहीं भी थोड़ी भी चूक न हो जाए ना। हमारी चूक नहीं होती है, लेकिन दूसरे की चूक होती है सामने वाला, और वो ही कहीं ठोकर मार देता है, हम तो ठीक चला रहे हैं, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे नहीं मैं तो ठीक चल रहा हूं पर दूसरे ठीक नहीं चल रहे हैं, वो ठीक नहीं चल रहे हैं उसमें हम उनको दोष तो नहीं देंगे, तो हम कहां तक ठीक है। अगर दूसरे ठीक नहीं है तो कम से कम हम तो ठीक रहे, हम तो अपनी अपनी सुरक्षा करें। ऐसे तो नहीं कहेंगे एक्सीडेंट करने के बाद हम दूसरों को दोष देंगे, इसके कारण हुआ इसके कारण हुआ। होता है ना, कई बार ऐसे होता है कि हमारी तो बड़ी गाड़ी है और दूसरा जो है जो एक्सीडेंट करता है वो तो टू व्हीलर है और हमारी फोर व्हीलर है। तो ये भी एक नियम है कि अगर टू व्हीलर के साथ फोर व्हीलर की का टक्कर हुआ तो दोषी टू व्हीलर नहीं होगा, कौन होगा? फोर व्हीलर ही होगा, भले दोष टू व्हीलर का ही हो। वो आजकल तो टू व्हीलर वाले कैसे बीच बीच में कैसे चले जाते हैं पता भी नहीं चलता है, परंतु फिर भी दोषी फोर व्हीलर ही होगा। क्यों? क्योंकि बड़ी गाड़ी वाला है, तो बड़ी गाड़ी वाले पर दोष है। अब हम तो कितने बड़े हैं, तो बाबा कहते तुम कौन हो? तो सारथी बन करके रथ को चलाना, माना जिसको बाबा कहते कर्म इंद्रिय जीत बनना, इसी को कहेंगे कर्म इंद्रिय जीत। अब गाड़ी में कोई खा रहे हैं और ड्राइवर को कहेंगे आप भी खाओ, तो वो कहेगा नहीं नहीं मुझे गाड़ी चलानी है। वो बातें कर रहे हैं और ड्राइवर भी उनके साथ बातें कर रहा है, हाँ होगा ठीक है, ये ड्राइवर भी बातें करता रहे, मोबाइल भी देखता रहे, बातें भी करता रहे, खाता भी रहे और गाड़ी भी चलाता रहे, हो सकता है। तो ड्राइवर को बहुत सावधान रहना पड़ता है क्योंकि उसको ठीक गाड़ी चलानी है, एक्सीडेंट नहीं करना है। इसलिए बाबा हमेशा कहते सारथी, बस तुम्हारा काम क्या है, इस रथ को ठीक चलाना। तो इस एक तरफ तो रथ को ठीक चलाना है, रथ को ठीक चलाना माना शरीर का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, मोटर गाड़ी है तो शरीर का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। अब डालना इसमें पेट्रोल और डाल देते घासलेट तो क्या होता है हाँ क्या होगा। तो शरीर को कैसा भोजन देना है वो भी हमको सही ज्ञान चाहिए, शरीर के लिए क्या उचित है वो भी हमको समझना होगा, कैसे एक्सरसाइज करनी क्या करना वो भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि आखिर शरीर तो मूल्यवान है। बाबा कहते अंतिम जीवन है, अंतिम जन्म है, तो मूल्यवान तो है शरीर, चत्तियां चला लगा करके भी शरीर को चलाना है, क्योंकि फिर दूसरा जन्म लेंगे तो फिर तो पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। इसलिए सच्चा सारथी बनना माना शरीर को भी ठीक ढंग से चलाना, अर्थात इंद्रियों को भी ठीक ढंग से चलाना और मन बुद्धि संस्कार को भी ठीक ढंग से चलाना, यानी अपनी जो ड्राइवर की बुद्धि भी इतनी अलर्ट चाहिए, मन भी विचलित नहीं होना चाहिए, संस्कार भी उनको बहुत एकाग्रता के रखने चाहिए, तो उसको बाबा कहते सारथी। तो इसलिए सारथी शब्द में बहुत बड़ी गहराई है। तो अपने आप से पूछना है योग युक्त माना मैं सचमुच अपने इंद्रियों का मालिक हूँ, इंद्रियों को ठीक ढंग से चला रहा हूँ, कोई भी इंद्री हमको धोखा तो नहीं दे रही है। क्योंकि ये जो पंच इंद्रियां है ना, ये पंच विकारों का ही स्वरूप बन जाती है। जैसे हम कहते भाई पंच इंद्रियों के रस मानते हैं, एक है कन रस कहते हैं, फिर तो ये पांच इंद्रियां हैं, स्पर्श रस, तो स्पर्श रस माना चमड़ी। अब ये स्पर्श रस चमड़ी ये कौन से विकार का संकेत है? कामवासना। कामवासना क्या है? स्पर्श रस ही तो है, उसका ही आकर्षण है, उसी का ही वो अल्पकाल का सुख लेते हैं। तो ये विकार हो गया काम विकार, जितना स्पर्श रस के आकर्षण में जाएंगे उतनी कामवासना बढ़ेगी। और बाबा कहते हैं उसका छोटा सा रूप क्या है, कोई कहेगा नहीं मैं तो पवित्र रहता हूँ, ठीक है पवित्र रहते हैं, लेकिन उस स्पर्श रस का सबसे छोटे से छोटा स्वरूप कौन सा है? हम किसी म्यूजियम में जाते हैं, म्यूजियम अजायब घर में जाते हैं तो वहां पर कितनी चीजें होती है देखने की होती है, और सब जगह लिखा रहता है कृपया हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए। हाँ, एक एक चीज पर लिखा रहता है कृपया हाथ मत लगाइए, पर फिर भी हम क्या करते हैं, हाँ? क्या करते हैं, आगे पीछे देखते, कोई देख तो नहीं रहा है तो हाथ तो लगाइए। अब क्यों हाथ लगाना है, खरीदारी तो है नहीं वहां, कोई दुकान तो नहीं है ना, वो खाली देखने के लिए बस, लेकिन हाथ लगाना कैसे है ये, इसका कैसा है ये। तो ये स्पर्श रस, ये भी तो स्पर्श रस हो गया, तो ये छोटा रूप है लेकिन इसका ही विकराल रूप है काम वासना। और काम वासना का देखो आज विकराल रूप कितना हो गया है, ये बलात्कार, ये क्या है, ये काम वासना का विकराल रूप है, स्पर्श रस का ही विकराल स्वरूप है, ये कितना बड़ा घोर कलयुग का ये स्वरूप है जो आज हम देख रहे हैं। फिर क्रोध देखो, ये क्रोध क्या है, ये आंखें, ये है मानो नेत्र रस, तो ये नेत्र रस आंखों से कितना गुस्सा दिखाई देता है, मुख से गुस्सा तो बाद में निकलेगा, पहले कहां से गुस्सा आता है, आंखों से आता है, पता चलता है ये बहुत, इसको बहुत गुस्सा है, भले बोला कुछ नहीं लेकिन गुस्सा है। तो जैसे ये चेहरा मन का दर्पण है तो उस चेहरे में भी सबसे पहले आंखें, ये मन का दर्पण है, तो इसीलिए आंखों से वो क्रोध दिखाई देता है। और बाबा कहते हैं आंखों को तो शीतल बनाना है, तो स्पर्श रस को भी हम शीतल बनाएं, नेत्रों को भी शीतल बनाएं। फिर तीसरा विकार, तीसरा है ये जीव रस, वो है लोभ, तो बाबा कहते हैं लोभ को भी हमें जीतना है, इसलिए ये लोभ विकार भी कितना दुख देता दे सकता है, यही चीज चाहिए खाने के लिए, यही खाऊंगा, नहीं नहीं मिलेगा तो खाना ही नहीं खाएगा। अब ऐसे भी बहुत लोग हैं वही चाहिए, यहाँ तक कि मरने तक भी वही सोचते हैं। एक किसी का मिसाल देते हैं कि वो मरने की स्थिति थी और वो माता कह रही है मुझे तो सीताफल चाहिए, सीताफल चाहिए। अब सीताफल कहाँ से आएगा, वो सीजन तो थी नहीं सीताफल की, बस सीताफल चाहिए, सीता मर रही है। अब गए चलो ढूंढे कहाँ सीताफल मिलेगा, पता नहीं कहाँ से कोई ऐसे दुकान से चलो ला भी गए, ला भी दिया, परंतु आते आते ओम शांति वो तो गई। तो अंत में क्या याद रहा, सीताफल। एक किसी का ये भी मिसाल दिया कि पानीपुरी चाहिए, पानीपुरी पर मरने से पहले इसकी ये अंतिम इच्छा पूरी कर लो, पानीपुरी खिला दो। चलो वो भी खाई, और परंतु जब तक वो तैयार होने में टाइम तो लगता है ना, कोई ऐसी थोड़ी कीमत खाली ऐसे ही बन गया, परंतु गई आत्मा। तो ये लोभ की जो वृत्ति है, अब ये जीव ये भी बहुत धोखा दे सकती है, और वो लोभ भी बाबा कहते कितना बड़ा विकार है। तो फिर मोह, मोह के लिए कौन सी इंद्रिय है, ये नाक। तो ये है जैसे क्या कहेंगे इसको, गंध रस, स्पर्श रस, नेत्र रस, जीव रस और गंध रस। तो गंध रस जिससे मोह होता है ना, बस उसको चिपक के रखेंगे, से जैसे उसको उसकी सुगंध लेते रहेंगे। कईयों को कुत्तों से बहुत प्यार होता है, बिल्लियों से बहुत प्यार होता है, आजकल मनुष्यों से प्यार कम है, कुत्ते बिल्लियों से बहुत है। तो इतना उसको ऐसे उसको पकड़ के रखते हैं, उनको सूंघते रहते हैं, तो ये भी तो मोह की निशानी है। कई तो ऐसे, एक बहन का सुना जिसका अपने कुत्ते में इतना मोह था, इतना मोह था। अब कुत्ता की तो कितनी आयु होती है, 10-12 साल बस, और वो कुत्ता मर गया। अब मर गया तो इतना रोई, इतना रोई, वो इंसान के लिए नहीं रोती बल्कि कुत्ते के लिए रोई। मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी, एक माता 9-10 बिल्लियां थी उसके घर में, अकेली रहती थी और बिल्लियां ही पालती थी। तो मैंने कहा सेंटर पर क्यों नहीं आती, बहुत पुरानी बहन लेकिन सेंटर पर नहीं आती। कहती मेरी बिल्लियों को कौन पालेगा, कौन देखेगा मैं अगर सेंटर पर आऊं तो, अब बताओ ऐसे भी है मनुष्य। तो और बस सारा दिन बिल्लियों को, तो हमने उससे कहा कि आपको बिल्लियों से इतना प्यार क्यों है। तो कहती है ये हमको गुस्सा आता है ना, तुम्हारी बिल्लियां हमको प्यार करती है, मियाओ प्यार से कहती है, तो सर सारा गुस्सा ही हमारा खत्म हो जाता है। तो मनुष्य तो गुस्सा दिलाते हैं, पर ये बिल्लियां हमारी बहुत प्यारी है, हमारा वह सारा दिन उनको ही खाना खिलाना, उनको दूध देना, बस यही उनका कार्य था। तो देखो ये भी लोग हैं। तो इसीलिए मोह माना ये नाक, और अहंकार कन रस। किसी ने मेरे लिए कुछ बुरा कहा और मैंने सुन लिया, अच्छा इसने मेरे लिए ऐसे कहा, क्या समझता है मैं भी कम हो क्या, कान खड़े हो गए। तो ये अहंकार की निशानी है। तो ये पांच इंद्रियां, ये पांच विकारों को कैसे आकर्षित करती है, इसीलिए बाबा कहते हैं ये कर्म इंद्रिय जीत बनना है। एक एक कर्म इंद्री को कैसे वश में करना होता है, तो बाबा कहते हैं मालिक बन जाओ। मैं आत्मा यहाँ अकाल तख्त पर विराजमान हूँ और इस देह की इंद्रियों का मालिक हूँ। तो राजयोग माना ही इन इंद्रियों का राजा। ये मेरी कोई भी इंद्री मेरी आज्ञा के बिना कोई भी गलत काम नहीं कर सकती है। तो ये जब हम अपने ऊपर इतना अटेंशन देंगे, चेकिंग रखेंगे, तभी तो चेंज होगा। ये कई बार हम कह देते हैं, मेरा आज भी उस दिन भी बाबा ने कहा, बच्चे कई ऐसे हैं कुछ भी बोल देंगे फिर कहेंगे मेरा भाव तो ऐसा था नहीं। अरे भाव नहीं था तो फिर कहा ही क्यों। भाव नहीं था तो नहीं है, भाव तो कहो भी नहीं ना। जरूर है, मन में था तभी तो मुख से निकल गया, अगर मन में नहीं होता तो मुख से क्यों निकलता। ऐसे कोई भी शब्द मुख से नहीं निकलता जब तक वो मन में ना हो, ऐसे ही थोड़ी निकल गया। तीर तो आपने चलाए ना, तो ये तो ऐसे थोड़ी कहेंगे अपने आप तीर चल गया, नहीं ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि कैसे इन कर्म इंद्रियों को अपने वश में रखो। उस दिन भी बाबा का वरदान था अलंकारी बनना। बाबा कहते क्यों विष्णु को दिया जबकि आपकी अलंकार है, लेकिन तुम अलंकार अपना गिरा देते हो। तो इसीलिए देवताओं को दिया है। तो इसीलिए एक एक कर्म इंद्री पर मेरी विजय हो। क्या मेरी आंखें बिल्कुल सिविल है देखना है, क्या मेरे कान इतने केवल बाबा के ज्ञान के माँ वाक्य ही सुनते हैं या और दुनियावी बातें सुनते हैं, क्या इस मुख से केवल ज्ञान ही प्रकट होता है या और कुछ दुनियावी बातें भी प्रकट होती है, ये भी देखना है। आपको मैं कई अनुभव में कई बार सुनाती हूँ, जब बाबा ने मुझे ये वरदान दिया कि तुम्हारी जिबान पर सरस्वती का वास है आदि, ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती आपकी जिबान पर है, बाबा ने ये वरदान मुझे दिया। तो जैसे बाबा ने ये वरदान दिया तो मेरी तो बुद्धि बहुत चलने लगी। तो मैंने सोचा बाबा ने इतना बड़ा वरदान दे दिया, तो दो बातें मेरे मन में आई। एक तो अगर सरस्वती जिबान पर है तो इस मुख से कोई भी अपशब्द या कोई भी गलत शब्द या कोई भी अज्ञानवश शब्द नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि सरस्वती कौन होती है, वो तो ज्ञान की देवी होती है, तो ज्ञान ही उनके मुख से निकलेगा, अज्ञान की बातें तो नहीं निकलेगी, कोई ऐसे कड़वे बोल तो नहीं निकलेंगे, दुखदायी शब्द तो नहीं निकलेंगे। तो इतना अपने पर अटेंशन मैंने रखा, बाबा ने इतना बड़ा वरदान दिया, जरूर बाबा ने मुझे वो रूप देखा है। फिर दूसरा विचार चला, अगर बाबा ने मुझे ऐसा वरदान दिया तो बाबा मुझसे कुछ करवाना चाहते हैं, तो बहुत बड़ी सेवा देना चाहते हैं, तो उसके लिए बाबा तैयार कर रहे हैं। तो क्या सेवा बाबा हमें देंगे, वैसे तो सेवा कर ही रहे थे, कोई ऐसे नहीं कि सेवा नहीं कर रहे थे। और बिल्कुल उसी के थोड़े समय के बाद टेलीविजन का निमंत्रण मिला। ये तब तो टीवी में तो हम लोगों के प्रोग्राम तो आते नहीं थे। तो 93 में सबसे पहले जो प्राइवेट चैनल्स चालू हुए उसमें जी टीवी शुरू हुआ और ब्रह्मा कुमारियों को निमंत्रण मिला लेक्चर्स देने के लिए, और उसमें सबसे पहले तारी जी ने मुझे भेजा। तो तब मुझे ध्यान में आया कि देखो बाबा ने इतना वरदान दिया, क्या सोच समझ कर दिया होगा ना, इतनी शक्ति बाबा ने भरी। तो पहले तो मैं संकोच करने लगी, क्योंकि उस समय टीवी तो थी नहीं जो इस प्रकार से हम कोई रिकॉर्डिंग करें और ऐसे टेलीविजन का प्रोग्राम हो, और पहली बार था। तो परंतु क्योंकि दादी जी ने मुझे कहा तो मैंने स्वीकार कर लिया। तो यानी कहने का भाव है कि एक लक्ष्य होता है कि मुझे क्या करना है, और उस लक्ष्य के मुताबिक अगर हम चलते हैं तो ऑटोमेटिकली वो लक्षण आ ही जाते हैं। तो इसीलिए ये पांच विकार कैसे पांच इंद्रियों को आप खींचते हैं, या इंद्रियां विकारों को खींचती है, उसी पर ही हमें जीत पानी है। तो बाबा ने जो हमें आत्मा का ज्ञान दिया, माना मालिक बन करके इन इंद्रियों को चलाओ, गाड़ी को ठीक ढंग से चलाओ, कोई ऐसा उल्टा कर्म इन इंद्रियों से न हो, ये पहला अपने ऊपर अटेंशन देना है, तब कहेंगे सारथी। फिर बाबा कहते मन बुद्धि संस्कार भी आपके, कोई संस्कार के वश हो जाते तो हम कहते ये पुराने संस्कार है, और बाबा कहते सबसे पुराने तो आपके आदि संस्कार है, वो याद रखो। जो अनादि और आदि संस्कार है वो भूल जाते हैं, और जो मध्यकाल और अंतकाल के ये पुराने संस्कार जो विकारी संस्कार है वो तो बहुत याद है। तो जब भी ये कुछ पुराने संस्कार याद आए, याद रखो मेरे अनादि संस्कार कौन से, कौन से अनादि संस्कार, जो मैं आत्मा पांच जो सात गुणों की स्वरूप हूँ, आठ कहो सात तो चलो पवित्र ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद शक्ति कहते, लेकिन इन सब के ऊपर है आत्मा सत्य है, तो आठ कह सकते हैं आत्मा सत्य है। तो सत्य माना अविनाशी है, सत्य माना नित्य है, सत्य माना अपरिवर्तनशील है। तो मैं उस अपने अनादि गुण को कैसे भूल सकती हूँ। तो कोई भी मेरी इंद्री द्वारा ऐसा कर्म न हो जो किसी को दुख मिले, ये अनादि गुण। और फिर बाबा कहते हैं अनादि गुणों का ही जब प्रैक्टिकल स्वरूप होता है जीवन में, वो हमारे आदि गुण है देवताओं के गुण, एक एक जो दैवी गुण है उनका किसी न किसी सात गुणों से हम मेल कर सकते हैं। ये भी एक विचार सागर मंथन करने की बात है कि पवित्रता के अंतर्गत कौन से दैवी गुण आते हैं, शांति के अंतर्गत कौन से दैवी गुण आते हैं। वैसे तो 36 दैवी गुणों का वर्णन है, देवताओं के गुण कौन से हैं। तो एक एक जो उसका जो इसको बाबा कहते हैं इननेट क्वालिटीज, जो सच जो आत्मा के निजी गुण हैं जिनके आधार पर ये आदि गुण देवताओं के हैं, उनको याद करो, वो हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं। तो जब भी ये इंद्री कोई भी अशुद्ध संस्कार के वश हो जाए तो याद करो मैं कौन। इसलिए बाबा कहते मैं कौन में कितनी गहराई है, मैं कौन। कई कहते थे हम योग क्या लगाएं, बस मैं आत्मा हूं, मैं शिव बाबा की संतान हूं, ऐसे नहीं। मैं कौन में कितनी गहराई है, केवल मैं कौन, उस मैं शब्द में ही कितनी गहराई है। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं मैं फलाना फलाना की बजाय मैं आत्मा, मैं और मेरा, यही नरक के भी द्वार है और यही स्वर्ग के भी द्वार है। मेरा मेरा कहने की बजाय मेरा बाबा कहो, और जब मेरा बाबा कहा वो स्वर्ग का द्वार बन जाएगा, और मेरा फलाना 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 कहा तो वो नरक का द्वार बन जाएगा। तो इसलिए ये मैं मेरा ये दोनों शब्दों में कितना बड़ा राज समाया हुआ है। उस दिन भी बाबा ने मुरली में टीचर्स को कहा मैं पहले, क्योंकि आगे बैठती थी टीचर्स बहने मेरी ओम शांति भवन में, तो टीचर्स को आगे बिठाते थे, तो वो बिल्कुल पहले आकर के बैठती थी बाबा से एकदम दृष्टि लेने के लिए। तो उसमें उनको कितनी कंपटीशन होती थी कौन पहले आता है। शांतिवन में भी डायमंड हॉल में प्रवेश होने लिए कितनी अंदर में धक्का धक्की भी होती थी, हम कैसे आगे जाएं आगे बैठें। खैर तो आगे उसमें मैं पहले तो हर बात में मैं पहले, तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करने में मैं पहले क्यों नहीं, और बातों में मैं पहले। तो फिर बाबा ने दो और शब्द कहे, ईर्ष्या और स्वार्थ। तो इन दोनों से भी हमें परे होना है। तो ये सारी बातें जो बाबा हमें मुरली में कहते हैं, हम उनको कितना फॉलो करते हैं। आज की बाबा की मुरली थी श्रीमत, तो श्रीमत हमें क्या क्या कहती है, ये सारी श्रीमत मर्यादा की लकीर है। इस मर्यादा की लकीर के अंदर रहना, ये है श्रीमत को फॉलो करना। बाबा ने हर कर्म के लिए श्रीमत दी है। उठो तो कैसे उठो, उस दिन भी बाबा ने कहा सबसे पहले क्या कहो, गुड मॉर्निंग बाबा। हाँ, बाबा से के सिवा और कोई उस उठते ही और याद कोई ना आए, और रात को सोते समय गुड नाइट बाबा। हाँ, सभी करते हैं ना, सभी करते हैं बिल्कुल, या और कोई याद आ जाता है तो इसलिए देखो, सब हर कर्म के लिए, हर सोच के लिए, हर बोल के लिए बाबा की श्रीमत है। सुबह से लेकर रात्रि तक के लिए श्रीमत है, यहाँ तक कि नींद के लिए भी श्रीमत है। आप सोचो, हर मुरली से आप निकाल सकते हैं कि किस बाबा ने ये श्रीमत किसके लिए दी, किस कर्म के लिए दी, किस बोल के लिए दी, किस संकल्प के लिए दी। ये होमवर्क हम मुरलियों से निकाल सकते हैं। भोजन करो तो कैसे करो, ये भी बाबा ने उस दिन मुरली में कहा। चलो बाबा को भोग लगाना है, पर बाबा को भोग लगाना है और ऐसे ही बाबा को भोग नहीं लगाया और ऐसे ही खा लिया, गीता में भी आता है, जो भोग नहीं लगाता है उसको क्या कहेंगे, चोर। तो शिव बाबा का दिया हुआ भोजन है, ब्रह्मा भोजन है, और ऐसे ही बस शुरू कर दिया खाना, तो फिर तो हम चोर हो गए। शिव बाबा को याद ही नहीं किया, उनको थैंक्स तो दिया ही नहीं। भक्ति मार्ग में भी करते हैं, और ज्ञान मार्ग में ऐसे खा लिया तो, इसीलिए बाबा कहते हैं वो भी ठीक नहीं है। तो भोग भी जरूर लगाना है। और ब्राह्मण माना ही क्या, ब्राह्मण किसको कहेंगे, ब्राह्मण की जो क्वालिफिकेशंस है वो सारी जो श्रीमत है उसी अनुसार ही है। भक्ति मार्ग में भी, शास्त्रों में भी, ब्राह्मण किसको कहेंगे, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठे। ब्रह्म मुहूर्त इसीलिए मशहूर है। अगर 5 बजे उठे, 6 बजे उठे, 7 बजे उठे तो क्या कहेंगे, 3 बजे उठे तो हम कहेंगे महायोगी, 4 बजे उठे तो चलो योगी, 5 बजे उठे तो भक्त भी 5 बजे उठ जाते हैं, 6 बजे उठे तो रोगी, 7 बजे उठे तो भोगी। 7 बजे कौन उठते, वो भी उठ जाते, भोगी भी उठ जाते, परंतु ब्राह्मण कौन, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठे। जब भोगी सब सोए हुए हैं उनके लिए रात है, योगियों के लिए वो सवेरा है। तो जब भोगी सोते हैं तब योगी जागते हैं। मुझे याद है मैं हांगकांग में गई थी, तो हांगकांग में हमारा जो सेंटर था ना, वो 16वें मंजिल पर था, बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हांगकांग में, तो 16वें मंजिल पर था और गर्मी बहुत थी। तो मुझे कहा कि आप एसी चलाओ, मैंने कहा नहीं एसी नहीं चलानी है, एसी पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, खिड़कियां खोल देंगे। लेकिन तो कहा बहन जी आपको नींद नहीं आएगी, मैंने कहा क्यों नहीं आएगी नींद, क्या मच्छर है, बोला मच्छर नहीं है लेकिन बहुत आवाज होगा। तो हमने कहा क्यों आवाज होगा, रात को क्यों आवाज होना चाहिए, तो कहा देखना। तो मैंने एसी नहीं चलाया और खिड़कियां खोल दी, सारी रात नींद नहीं आई, इतनी गाड़ियों की आवाज, सारी रात आवाज, पौ 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 आवाज ही आवाज आती रही, 4 बजे तक आवाज आया, और उसके बाद आखिर फिर तो खिड़की बंद करनी पड़ी। तो मैंने कहा ऐसे क्यों, कहा लोग तो यहाँ 4 बजे सोते हैं, सारी रात वो ये पता नहीं कहाँ कहाँ जाते होंगे, तो 4 बजे तक भोगी लोग का काम क्या है, वो 4 बजे जाकर के सोते हैं और उस समय तो हमारे उठने का समय है। तो देखो सचमुच हमने कहा भाई, हमने उनका माना नहीं, हमने कहा नहीं हमको तो एसी नहीं चाहिए, खिड़कियां खुली रखो, चलो पंखा चला लो। तो देखो वहां तो सब एसी में ही सोते हैं, एसी तो हमने कहा भारत में तो हम लोगों को जरूरत ही नहीं है और मधुबन में तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। दुबई में जाओ तो 24 घंटा एसी चाहिए, 24 घंटा दिन रात वो चाहिए। लेकिन ये सब चलो ठीक है, पर कहने का भाव है कि ब्राह्मण किसको कहेंगे, तो ब्रह्म मुहूर्त। फिर दूसरा ब्राह्मण किसको कहेंगे, जो जिसके पास ब्रह्म ज्ञान हो, इसलिए ब्रह्म ज्ञान कहते हैं तो ब्रह्मा, परंतु वो ब्रह्म कह देते हैं तो ब्रह्मा ज्ञान, अर्थात जो शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा दिया वो ज्ञान सदा बुद्धि में हो, वही ब्रह्म ज्ञान है। तो जो ब्रह्मा से रिलेटेड है तो ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म ज्ञान, फिर ब्रह्मा भोजन, ब्रह्म भोज कहते हैं। तो जो ब्रह्मा बाबा स्वीकार करते थे वही भोजन हमें भी स्वीकार करना है। फिर चौथा है ब्रह्मचर्य, वो भी वास्तव में ब्रह्माचार्य है, अर्थात जो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा सिखाया और ब्रह्मा बाबा ने खुद उसको आचरण में लाया वो हो गया वो सच्चे ब्राह्मण। तो ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म भोज और ब्रह्मचर्य। फिर तो और बहुत है ब्राह्मणों की विशेषताएं। ब्राह्मण वो जो पढ़ाई पढ़े और पढ़ाए, पढ़े भी और पढ़ाए भी। हमेशा कच्छ में कुरम बाबा कहते, कच्छ में कुरम माना बगल में, हाथ में सदा किताब, कुरम माना किताब, कुरम माना किताब, सदा उसके पास शास्त्र सदा ही उसके उसके हाथ में है, उसके बगल में है। तो सदा ही पढ़ना और पढ़ाना, सदा स्टूडेंट लाइफ, ये ब्राह्मण है। तो पढ़ना पढ़ाना, इसलिए बाबा की हर मुरली में आता है बच्चे दूसरों को सुनाओ, दूसरों को सुनाओ, केवल अपने तक नहीं रखो। कई कहते हैं मैं हम ज्ञान नहीं सुना सकते, तो बाबा कहते हैं और बातें सुना सकते हो, ज्ञान क्यों नहीं सुना सकते, बाकी तो दुनिया की सारी बातें सुना सकते हो और ज्ञान नहीं सुना सकते हो। ऐसे बुद्धू तो नहीं है ना जो नहीं सुना सकते, लेकिन अभ्यास जरूर चाहिए ज्ञान की बातें कैसे सुनाना, और वो सचमुच दिल से तब लगे जब पहले हम भी उसको धारण करें। इसीलिए बाबा कहते हैं पहले खुद धारणा मूर्त बनना है, अगर मन में खोट होगी तो ज्ञान मुख से निकलेगा नहीं। आज तो बाबा ने कह दिया गलाई घुट जाएगा, गलाई घुट जाएगा, वो ज्ञान मुख से निकलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो धारणा तो है नहीं, और चलो धारणा नहीं है फिर भी ज्ञान सुनाते हैं तो जो दूसरा सुनने वाला वो आगे चला जाएगा और सुनाने वाला पीछे रह जाएगा, ये भी है बाबा बताते हैं। तो इसीलिए पढ़ना और पढ़ाना, खुद को भी पढ़ाना है, केवल दूसरों को तो नहीं पढ़ाते ना, अगर जब हम दूसरों को पढ़ाते तो खुद को भी तो पढ़ा रहे हैं ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं पढ़ना और पढ़ाना। फिर दूसरा क्या है ब्राह्मणों के लिए, क्या कहते हैं, यज्ञ करना और कराना, स्वाहा 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 स्वाहा, ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। तो खुद भी विकारों का स्वाहा और दूसरों से भी स्वाहा कराना, ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। ब्राह्मण उसको कहेंगे जो धर्म का रक्षक हो, धर्म की रक्षा करने वाला हो, और धर्म का मतलब ये धारणा, तो जीवन की धारणाएं उनकी रक्षा करने वाला हो, उनको आचरण में लाने वाला हो, वो ब्राह्मण है। और हम तो कौन कौन से ब्राह्मण है, ब्रह्मा की डायरेक्ट मुख वंशावली। वैसे ब्रह्मा को कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, तो 84 जन्म वो पहला आदि ब्रह्मा, फिर उसके पीछे जन्म 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 84 जन्म, तो इसलिए 84 ग्रेट 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 आ जाएगा ना। पर हम क्या कहेंगे, हमारे लिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है क्या ब्रह्मा? हमारे लिए ब्रह्मा क्या है, डायरेक्ट फादर है, क्योंकि पहली रचना है हम। हम पहली रचना हैं, तो संगम पर भी पहली रचना, फिर सतयुग में भी पहली रचना, ब्रह्मा के साथ साथ है ना। आज भी बाबा ने कहा कि कैसे ब्रह्मा सबसे पहला भक्त बना, वही आत्मा, सबसे पहला मनुष्य आदि देव, सबसे पहला मनुष्य एडम जिसको आदम कहा, अपना पहला आदमी शिव बाबा जिनके तन में प्रवेश करते हैं और स्थापना करते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की, तो वो आदि पिता हो गया। तो हमारा तो डायरेक्ट पिता है, ब्रह्मा की डायरेक्ट संतान है हम नहीं कहेंगे ब्रह्मा बाबा को ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, वो तो उनके लिए है जो पीछे आए हुए हैं। तो हम तो डायरेक्ट ब्रह्मा की संतान है। तो इस समय हम रचना कर रहे हैं ब्रह्मा के साथ, फिर वही आदि देव, फिर वही विष्णु बनता है, ब्रह्मा सो विष्णु तो पालना करता है, तो फिर हम उनके साथ हैं, पहले जन्म में हैं, फिर अंत मान, फिर हम द्वापर में भी पहले पहले भक्ति शुरू करते हैं। तो वही आदि मानव आदि मनुष्य, वही आदि देवता, वही आदि भक्त। तो हम केवल ब्रह्मा तो नहीं है ना, कौन है, हम सब उनके साथ हैं। तो इसलिए जब हम ये नशा रखते हैं कि हम सारा चक्र ब्रह्मा के साथ हैं, तो हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, हम वो ब्राह्मण हैं। तो ऐसा अपने आप को समझ देनी है कि मैं कौन, जब ये मैं कौन हूं की गहराई में हम जाएंगे, तब हम सचमुच अपने कर्म इंद्रियों को वश में कर सकेंगे। और जब कर्म इंद्रियां वश में हुई तो ऑटोमेटिकली हम विकर्माजीत बन जाएंगे। तो पहले कर्म इंद्रिय जीत बनना है, फिर विकर्माजीत बनना है, फिर कर्मातीत बनना है, और फिर उसके बाद संपन्न और संपूर्ण बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, फिर मिलते रहेंगे।